रात के लगभग 8 बज रहे थे। शिवी सिद्धांत के साथ नीचे आ गई थी। बाहर हल्का अंधेरा हो गया था। आर्य भी उन्हीं के पीछे था। बाहर आते ही शिवी ने कहा, टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता। रात का क्या प्लान है?
कुछ नहीं, बस केस पर ही काम करना है। आज मॉम ने कुछ स्पेशल ट्राई किया है, तो एज यूजुअल सबको डिनर साथ में करना होगा, सिद्धांत ने जवाब दिया।
ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। तुम अकेले कहाँ जाओगी? ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ घर पर चलो। मॉम तुमसे मिलकर खुश होंगी और तुम हमारे साथ डिनर भी कर लेना, सिद्धांत ने इंसिस्ट किया।
शिवी ने तुरंत उसके साथ जाने से मना कर दिया।
अरे बिल्कुल नहीं, मेरा पेट फिलहाल तो भरा हुआ है। जाते टाइम कुछ ले लूंगी, रात को भूख लगेगी तो खा लूंगी। तुम एंजॉय करो, मैं चलती हूँ।
शिवी के दिमाग में कुछ चल रहा था, इसके लिए उसका अकेला होना जरूरी था। सिद्धांत ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शिवी ने उसे बाय कहा और वहां से चली गई। वहीं आर्य उनसे कुछ दूर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था।
शिवी को बाय बोलने के बाद सिद्धांत पलटा तो उसे सामने आर्य दिखाई दिया। वो अंदर जाने के बजाय उसके पास जाकर बोला,
रात भर यहीं रुकने का इरादा है या वापस होटल जाओगे?
तुम्हें उससे क्या, तुम्हें बेबी सिटिंग करने का इतना ही शौक है तो जाकर अपनी फ्रेंड की करो।
आई डोंट नीड योर केयर, आर्य ने काफी रूखे तरीके से जवाब दिया।
ठीक है, कर लूंगा। बेबी सिटिंग का पता नहीं, लेकिन तुम्हें एक ट्रू एडवाइस की जरूरत है। बहुत प्यार करते हो ना उससे? सिद्धांत ने बातचीत का रुख बदलते हुए अचानक पूछा।
अफकोर्स करता हूँ, ये बात मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं है, आर्य ने जवाब दिया।
हाँ, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम उसे हर्ट कर रहे हो। 3 साल पहले जो भी हुआ उसमें शिवी की कोई गलती नहीं थी, तुम उसे बेवजह सजा दे रहे हो।
सिद्धांत की बात सुनकर आर्य हल्का सा हंसा और फिर जवाब में बोला, मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि मुझे चीजें समझना है। आई नो वो इनोसेंट है। 3 साल पहले जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन अब जो वो कर रही है वो उसका डिसीजन है। उसने खुद हर्ट होना चूज किया है।
वो बस अपने पापा का साथ दे रही है। आज हम शिवंकल मिले थे और उन्होंने इतने सालों में पहली बार सच बताया है।
आर्य, उन्होंने उस रात तुम पर और आली पर हमला नहीं किया था।
ओके, देन प्रूव दिस, आर्य ने कंधे उचकाकर कहा।
अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो मुझे सबूत लाकर दिखाओ, मैं ऐसे बातों पर यकीन नहीं करूंगा। 3 साल से वो एक ही बात की रट लगाए हुए हैं कि उन्होंने ही मुझ पर और आली पर हमला किया था। अचानक बात उनकी बेटी पर आ गई तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया।
वो अब भी अपना स्टेटमेंट बदलने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने बस हमें सच बताया है, सिद्धांत चिढ़कर बोला।
हाँ, ताकि अपनी बेटी की नजरों में महान बन सके। नंदिनी सच में बहुत इनोसेंट है, आसानी से उनकी बातों में आ भी कैसे सकती हैं, पर उसकी गलती नहीं है। सालों पहले मेरे डैड ने भी मेरे साथ बहुत गलत किया था और उसे एक्सेप्ट करने में मुझे टाइम लगा था। नंदिनी को भी उसका टाइम लेने दो, आज नहीं तो कल वो समझ ही जाएंगी।
उसके मुंह से बार बार शिवी के लिए नंदिनी सुनकर सिद्धांत को इरिटेशन हो रही थी। उसे उसकी मॉम के नाम से बुलाना बंद करो, बाकी तुम्हें जो समझना है समझो, तुमसे बहस करना बेकार है। सिद्धांत वहां से अंदर चला गया जबकि आर्या अभी भी वहीं पर खड़ा था। शिवी को वहां से गए हुए लगभग आधे घंटे होने को आए थे।
वो सिद्धांत के पीछे गया और तेज आवाज में कहा, नंदिनी के घर का एड्रेस दो। तुम जिस नंदिनी की बात करते हो वो लंदन में रहती है, मुझसे बेहतर तुम्हें उनके एड्रेस का पता होगा। सिद्धांत उसकी तरफ मुड़कर बोला, तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मुझे मिस अय्यर का एड्रेस चाहिए।
कौन सी मिस अय्यर? यहाँ मुंबई में काफी सारे लोगों का सरनेम अय्यर है, तुम्हें कौन सी वाली का चाहिए? सिद्धांत जानबूझ कर आर्य को परेशान कर रहा था।
बहुत मजा आ रहा है ना मुझे परेशान करके, एड्रेस बताना है तो बताओ वरना जा रहा हूँ।
अब ना मिल सकूं लेकिन सुबह वो यहीं तुम्हारे आसपास मिलेगी, आर्य ने इरिटेट होकर कहा और वहां से जाने लगा।
सिद्धांत ने पीछे से चिल्लाकर कहा, मुंबई ईस्ट से 5 किलोमीटर दूर उस एरिया का फेमस रेस्टोरेंट निहार है, वहां से 10 मिनट की दूरी पर एक पुराने टाइप का घर मिल जाएगा, ना मिले तो किसी से पूछ लेना, पता चल जाएगा।
सिद्धांत के एड्रेस बताने के बावजूद आर्य ने उसे थैंक्स तक नहीं कहा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया।
ये सच में बहुत रूड है, पता नहीं शिवी इसे कैसे झेलती होगी, सिद्धांत ने आंखें घुमाकर कहा।
वहीं आर्य लॉ फर्म से निकला और उसने एक कैब हायर की। लगभग 1 घंटे बाद वो सिद्धांत के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुका था। उसे शिवी का घर तो मिल गया था लेकिन वो लॉक था, खामखा इतनी दूर आकर परेशान हो गया। नंदिनी ने कहा था कि वो खाना लेकर घर जाएगी, अब तक तो उसे घर पहुंच जाना चाहिए। फिर वो अचानक आर्य के दिमाग को कुछ सूझा और वो बोलते हुए रुक गया।
ओ नहीं, तुम ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो नंदिनी? उसने मुड़कर देखा तो उसकी कैब जा चुकी थी। वो थोड़ा आउट एरिया होने की वजह से वहां कैब भी नहीं मिल रही थी।
आर्य कुछ दूर चलकर आ गया तो उसे एक टैक्सी मिली।
जल्दी से मुझे डिजाइनिंग विला के ऑफिस लेकर चलो, आर्य ने टैक्सी में बैठते हुए कहा।
आर्य को इस बात का अंदाजा हो गया था कि शिवी कहाँ हो सकती थी। ऑफिस काफी दूर होने की वजह से वो रास्ते में बार बार शिवी को कॉल कर रहा था। उस ऑफिस में जाने से पहले ही शिवी ने अपना फोन साइलेंट कर लिया था।
आर्य का अंदाजा बिल्कुल ठीक था, शिवी इस वक्त डिजाइनिंग विला के ऑफिस में थी। वो कंपनी के पिछले हिस्से में थी और एक लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ी हुई थी। वो किसी मीटिंग रूम की खिड़की से अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी जिसका दरवाजा हल्का सा खुला था। मीटिंग रूम में गौरव मलिक, रिहान मलिक के अलावा एक और आदमी बैठा था। खिड़की बहुत थोड़ी सी खुली थी, इस वजह से शिवी को अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो उनकी बातें आराम से सुन पा रही थी। डैड प्लीज आप अपने पुराने फैलाए हुए मैस को खुद क्लीन कीजिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत मुश्किल से कंपनी को मैंने इतना ऊपर लाकर खड़ा किया है एंड आई रियली डोंट वांट कि कंपनी पर किसी तरह के कोई इल्जाम लगे। ये रिहान की आवाज थी जो गुस्से में बोल रहा था। उसकी बात सुनकर गौरव मलिक ने उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर कहा, ओ रियली रिहान, सब जानते हैं कि तुम कंपनी को कॉन्ट्रोवर्सी से कितना दूर रखते हो। तुम्हारा भी मुझे अच्छे से पता है तुम क्या करते हो। तुम्हारी प्राइवेट पार्टीज के बारे में मीडिया तक को पता है। वहाँ क्या होता है किसी से छुपा नहीं है। वहाँ जो भी होता हो पर किसी के मर्डर प्लान नहीं होते डैड, रिहान ने जवाब दिया। आपको अपने जो भी कनेक्शंस रखने हैं वो रख सकते हैं, पर कंपनी का नाम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, इस कंपनी को मैंने खड़ा किया है, गौरव मलिक ने सख्त आवाज में जवाब दिया। फिर पास में जो आदमी खड़ा था उसने उनसे कहा, महेश को बोल के कुछ दिन तक मुंबई से दूर रहे, कह दे उसे कि अपने गाँव चला जा, जब तक अय्यर को सजा नहीं हो जाती वो मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए। वो तो आज सुबह ही जा चुका है, साला परेशान हो गए हैं इस एक हफ्ते में, मन तो कर रहा है एक एक को गोली निकाल दूं, गौरव के पास खड़ा आदमी बोला। ठंड तक रॉकी, इसका मौका भी आने वाला है, दो दिनों में सर जी यहाँ होंगे और वो तुझे ये करने का मौका जरूर देंगे, गौरव मलिक ने मुस्कुराकर कहा। तो वहीं उनकी बात सुनकर रिहान के चेहरे पर हल्की घबराहट थी। आप किसको मारने का प्लान कर रहे हैं, रिहान ने घबरा कर पूछा। शिवी मलिक का जवाब सुन पाती उससे पहले उसे सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरने लगी तो वहीं उसकी आवाज़ सुनकर वो तीनों भी सतर्क हो गए।
कौन है वहाँ, वो अपने हाथ में टॉर्च लेकर उस तरफ ही आ रहा था। शिवी के घबराहट के मारे हालत खराब हो रही थी, उसे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो आर्य था जिसने शिवी को खींचा था। वहीं अब गौरव मलिक, रेहान और रॉकी बाहर आ चुके थे। गौरव मलिक ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, तुमने देखा यहाँ किसी को? हाँ, गैरेज के बाहर एक लकड़ी की सीढ़ी लगी रहती है, वो गायब थी, उसे मेरे अलावा और कोई नहीं छेड़ता। वो वहाँ नहीं देखी तो मुझे किसी और के होने का शक हुआ, यहाँ आकर देखा तो ये यहाँ लगी हुई थी, गार्ड ने लकड़ी की सीढ़ी की तरफ इशारा करके कहा। तो बेवकूफों की तरह यहाँ टाइम वेस्ट क्या कर रहे हो, जाकर ढूंढो, रेहान ने चिल्लाकर कहा। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही रेहान ने गौरव मलिक की तरफ देखा और कहा, कोई हमारी बातें सुन रहा था, आप जानते हैं ना इसका नतीजा क्या हो सकता है, अगर वो कोई रिपोर्टर हुआ तो? तब भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, गौरव मलिक ने उसकी बात बीच में काट कर कहा और फिर रॉकी को अपने साथ चलने का इशारा किया। वो दोनों वहां से जा चुके थे जबकि रेहान ने सभी गार्ड्स को काम पर लगा दिया था। अचानक उन तीनों के आने की वजह से शिवी और आर्य को छुपने का मौका मिल गया था। हम यहाँ बैकडोर से बाहर निकल सकते हैं, जल्दी चलो, आर्य ने धीमी आवाज में कहा। आर्य ने शिवी का हाथ पकड़ा और दोनों दीवार के सहारे होते हुए बैकडोर से बाहर निकल गए। उन तीनों के आने की वजह से उन्हें आराम से निकलने का मौका मिल गया। बाहर आने के बाद वो दोनों रोड पर चल रहे थे। आर्य ने शिवी का हाथ कसकर पकड़ रखा था, वो सामने की तरफ देखकर चल रहा था। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ आई हुई हूँ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं उनकी बात नहीं सुन पाई, शिवी उल्टा आर्य पर ही दोष डाल रही थी। आर्य ने उसकी तरफ देखा। शिवी ने महसूस किया वो उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था तो वो चुप हो गई। चलते हुए आर्य ने एक टैक्सी रुकवाई और शिवी की घर का एड्रेस बताया। वो दोनों वहां से शिवी के घर जा रहे थे जबकि शिवी को घबराहट महसूस हो रही थी। आर्य बहुत ज्यादा गुस्से में था, ऊपर से उससे बात भी नहीं कर रहा था। ऐसे रिएक्ट मत करो, मुझे डर लग रहा है, शिवी ने आर्य का हाथ पकड़कर कहा, लेकिन आर्य ने उसका हाथ झटक दिया। शिवी टैक्सी से बाहर देखने लग गई। उसने एक नज़र आर्य की तरफ देखा तो वो बिल्कुल सामने की तरफ देख रहा था। शिवी ने अपने मन में सोचा, पक्का मुझ पर गुस्सा करेगा और दो बात सुनाएगा, मेरी कोई गलती नहीं है, ऊपर से मुझे इसका गुस्सा झेलना पड़ेगा। वो लोग श्योरली मर्डर प्लान कर रहे थे और इसकी वजह से मैं कुछ नहीं सुन पाई, सारी गलती इसकी है, जब रिश्ता तोड़ दिया है तो क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ रहा है, आर्य ने सामने के आईने में देखा। शिवी एक टक उसकी तरफ देख रही थी। आर्य ने गुस्से में अपने हाथ को मुठ्ठियां बांध ली। लगभग डेढ़ से दो घंटे बाद शिवी का घर आ गया था। पूरे रास्ते आर्य ने एक शब्द भी नहीं बोला। घर आने पर उसने टैक्सी का किराया दिया। शिवी ने घर का दरवाजा खोला, जैसे ही वो अंदर आए आर्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अंदर ले जाने लगा।